28 नवंबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में निवेशकों के लिए तैयार हो रहा है बेहतर वातावरण।
बाय मूडीज रिसर्च अपग्रेड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड रेटिंग। दिस अपग्रेड कम्स आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 14 इयर्स।
ईसाई धर्मगुरु पोप ने म्यांमार की यात्रा में कहा, जातीय समूहों को सम्मान दिया जाए, और बताएंगे म्यांमार में कुछ बौद्धिक संगठनों की भूमिका क्यों है सवालों के घेरे में।
Il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप पहुंची हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में इवांका ने कहा कि ये सम्मेलन भारत और अमरीका के बीच बढ़ते आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का प्रतीक है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इवांका ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, और ये पहुंचना साबित करता है कि आमूलचूल बदलाव संभव है। पश्चिमी जर्मनी के शहर अल्टेना के मेयर आंड्रिया होल्स्टीन की तबीयत में सुधार हो रहा है। इस सप्ताह सोमवार को उन पर तेज धार वाले एक हथियार से हमला हुआ था। माना जा रहा है कि ये हमला प्रवासियों के प्रति उनकी उदारवादी नीतियों से संबंधित है। क्रिश्चियन डेमोक्रेट आंड्रिया होल्स्टीन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक कबाब की दुकान पर थे। आल्टेना शहर उस वक्त विवादों में आया था जब शहर ने कोटा में दी गई तय सीमा से अधिक प्रवासियों को अपनाया था। खुद पर हुए हमले के बारे में होल्स्टीन बताते हैं।
Hat gesagt, Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge.
उस व्यक्ति ने कहा, एक तरफ मुझे भूख से मरने दे रहे हो और दूसरी तरफ 200 प्रवासियों को आल्टेना ला रहे हो। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और उसने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। मैंने हाथ से चाकू पकड़कर झटक दिया, लेकिन ऐसा कर पाने में मैं पूरी तरह सफल नहीं हुआ और मेरी गर्दन एक तरफ से थोड़ी कट गई। लेकिन मेरा नसीब अच्छा था, कबाब की दुकान पर 2 लोग मौजूद थे, उन्होंने मेरी मदद की। इस कोशिश में उन्हें भी चोट लग सकती थी। हाँ, पर एक व्यक्ति को चोट लगी भी है। आल्टेना के मेयर आंड्रिया होल्स्टीन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने राजधानी नैरोबी में हुए एक समारोह में अपने पद की शपथ ली है। उनके विरोधी और विपक्ष के नेता राइला ओडिंगा ने कहा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं बल्कि उद्घाटन समारोह है, क्योंकि केन्याटा कानूनी तौर पर चुने नहीं गए हैं। रायला ओडिंगा ने इस साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। बाद में देश की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नतीजों में केन्याटा की जीत पर मुहर लगा दी थी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उहुरू केन्याटा ने कहा,
I dedicate all my energies and that of my administration.
अगले 5 सालों में मैं अपनी सारी शक्ति और मेरे प्रशासन की पूरी ताकत 2 मुख्य कामों को करने में लगा दूंगा। उनमें से पहला ये है कि मैं समाज के हर स्तर पर उन रिश्तों को मजबूत करूंगा जो केन्या के सभी नागरिकों को एक साथ बांधते हैं और हमें एक राष्ट्र बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें यह सीखना पड़ेगा कि हमारे मत अलग हो सकते हैं और हमें दूसरों के मत का सम्मान करना होगा, और हमें साथ ही साथ अपनी एकता को भी बढ़ाना होगा। केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा के शब्द। मिस्र के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिनाई प्रांत में सुरक्षा बलों ने एक अभियान के तहत विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं और 11 संदिग्धों को मार दिया है। यह अभियान सिनाई प्रांत के इस्माइलिया इलाके में चलाया गया था, जो प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके में है। अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि यह अभियान बीते शुक्रवार यहां एक मस्जिद पर हुए हमले से संबंधित है या नहीं। जुमे की नमाज के दौरान हुए इस हमले में 305 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में सरकार ने म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक विवादित योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश से अलग बाढ़ प्रवण और नमक दूषित एक द्वीप पर हजारों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए खास शिविर बनाए जाएंगे। सरकार की इस योजना के लिए 100 करोड़ डॉलर से अधिक धन की मंजूरी देने को सरकार के राहत शिविर बनाने के मजबूत फैसले की तरह देखा जा रहा है। हालांकि इस बात की चिंता जताई जा रही है कि इस द्वीप पर ज्वार काफी अधिक आते हैं और द्वीप मानव के रहने लायक है भी या नहीं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेटिंग एजेंसी मूडी द्वारा भारत को अपग्रेड किए जाने का मतलब है कि भारत में निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। मोदी की ये टिप्पणी हैदराबाद में हो रहे वैश्विक उद्यमियता शिखर सम्मेलन में आई है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी भाषण दिया है कि किस तरह अमरीका में भी करों की कमी की जा रही है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
रेटिंग एजेंसी मूडीज की शानदार सर्टिफिकेट के बाद भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत लोग आलोचना की है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे, लेकिन आज हैदराबाद में ग्लोबल उद्यमिता समिट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने एक अहम बात बताई।
बाय मूडीज रिसर्च अपग्रेड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड रेटिंग, दिस अपग्रेड कम्स आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 14 इयर्स।
हमारी आर्थिक प्रयासों के कारण करीब 14 साल के बाद मोदीज ने भारत का ग्रेड बढ़ाया है। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में भारत 54 रैंक से 2016 में 35 रैंक पहुंचा है। इसका महत्व यह है कि कितनी दक्षता से देश के बाहर और अंदर उत्पादों का गति हो रही है। ये निवेशकों के लिए अनुकूल व्यवस्था मैक्रो आर्थिक संदर्श के मजबूती की वजह से हो रहा है। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर आए हुए इवांका ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने उनके पिता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को फिर से दोहराया और कहा कि अमेरिका भारत का असली दोस्त है। इवांका ट्रंप ने कहा,
The dreamers, the innovators, entrepreneurs and leaders who never give up, never abandon your aspirations and always strive for a better tomorrow.
उद्यमियों का सफल होने का एक मन होता है और वो असफलता से डरते नहीं हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि उद्यमियों का समिट पहली बार भारत में हो रहा है और यहाँ 50% से भी ज्यादा डेलीगेट्स महिलाएं हैं। ये थे इवांका ट्रंप के शब्द। इवांका ट्रंप के लिए तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद को खूब सजा दिया है और इवांका ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी फलकनुमा पैलेस में एक रात्रि भोज भी दे रहे हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार पद्मावती फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने बयानबाजी करने वाले नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जब ये फिल्म मंसूरी के लिए लंबित है, तब सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग कैसे ये बयान दे सकते हैं कि सेंसर बोर्ड को इस फिल्म को पास करना चाहिए या नहीं। इससे फिल्म का विरोध कर रही करणी सेना जैसे संगठनों को धक्का लगा है। करणी सेना ने अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है और प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कोई दो माह तक कहीं बंद और कहीं रैली के बाद सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया तो उन संगठनों को धक्का लगा। फिल्म के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहां संजय लीला भंसाली की फिल्म पर रोक लगाई गई है। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश के बाद करणी सेना ने अब केंद्र सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी है। इस फैसले के बाद करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी जयपुर में मीडिया से मुखातिब हुए।
अब हम न कहीं देख रहे हैं, न दिखा रहे हैं, न किसी की मध्यस्थता करवा रहे हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें। सीधा सीधा सा सिनेमेटोग्राफी के आर्टिकल 6(ABC) के तहत इसको देशव्यापी बंद कराएं।
श्री कालवी ने सेंसर बोर्ड की इजाजत से पहले ही फिल्म प्रदर्शित करने पर फिल्म निर्माता के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, कुछ ताकतें ऐसी घटनाएं कर रही है जिससे करणी सेना की छवि खराब हो। करणी सेना ने कहा कि राजस्थान में कोई भी सिनेमाघर इसे प्रदर्शित करने को तैयार नहीं है। श्री कालवी ने जयपुर के नाहरगढ़ में एक व्यक्ति का शव मिलने की घटना पर भी जांच की मांग की है। उन्हें लगता है यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। करणी सेना का कहना था कि अब तक जो लोग अदालत गए हैं वे कमजोर कानूनी सामग्री के साथ गए हैं। करणी सेना के प्रदेश प्रमुख महिपाल सिंह मकराना कहते हैं,
अगर सुप्रीम कोर्ट में अब कोई जाएगा तो राजपूत करणी सेना जाएगी। हमारे सेंटीमेंट से अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो हम लोग यूं ही इस विरोध को जारी रखेंगे। केंद्र सरकार इसको बैन करे और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला अब की बार हम सुप्रीम कोर्ट पे रिट लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अगर जाने के लिए अगर किसी के पास साक्ष्य है तो हमारे पास है।
पद्मावती फिल्म बनकर तैयार है लेकिन उसके लिए सिनेमा के पर्दे पर उतरने का रास्ता लंबा हो गया है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस म्यांमार की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने सभी जातीय समूहों को सम्मान दिए जाने की मांग की है। उन्होंने अलग से रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि उन्हें बता दिया गया था कि म्यांमार की सरकार को ये बात पसंद नहीं आएगी। आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीनों में म्यांमार की फौज से बचकर लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। हालांकि म्यांमार की फौज मानवाधिकार हनन के आरोपों से इनकार करती रही है। विभिन्न बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए राजेश जोशी से।
पोप फ्रांसिस से कह दिया गया था कि अगर उन्होंने अपने भाषण में रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र किया तो म्यांमार में रह रहे कैथोलिक ईसाइयों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए अपने भाषण में पोप ने सभी जातीय समूहों को सम्मान देने की बात तो कही, पर रोहिंग्या मुसलमानों का अलग से जिक्र नहीं किया।
Il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto.
म्यांमार का भविष्य शांतिमय होना चाहिए, जो कि समाज के हर सदस्य की मर्यादा, अधिकारों और कानून के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित हो। उसको जनतांत्रिक मूल्यों का भी सम्मान करना चाहिए, ताकि हर समूह के सदस्यों को देश के उत्थान में योगदान करने का मौका मिल सके।
पोप फ्रांसिस के शब्द। म्यांमार पर जातीय नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं और अगस्त से अब तक 6.25 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। म्यांमार की सरकार मुसलमानों को बंगाली कहती है। सरकार का कहना है कि ये लोग बांग्लादेश से गैरकानूनी तौर पर म्यांमार आए हैं, इसलिए इन्हें म्यांमार के जातीय समूहों के तौर पर चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल पोप फ्रांसिस की मुलाकात म्यांमार की नेता ऑंग सान सू ची से भी हुई है। इस मुलाकात से पहले मानवाधिकार संगठनों को उम्मीद थी कि पोप फ्रांसिस रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में जरूर अपनी आवाज उठाएंगे। मानवाधिकार संगठनों ने उनसे रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करने की अपील की थी। उनका कहना था कि अगर पोप रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र नहीं करेंगे तो उनकी नैतिक सत्ता जाती रहेगी। 45 राइट्स नामक संगठन की केट विग्नेश्वरन ने कहा कि रोहिंग्या का जिक्र क्यों जरूरी है।
Absolutely, he should be using that term. The Rohingya have, you know, the right to self-identify.
म्यांमार की सरकार और सेना की कोशिश रही है कि राज्य और दूसरे लोग इस शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि वो उन पर बंगाली और विदेशी का ठप्पा लगाना चाहते हैं।
ये थे 45 राइट्स नामक संगठन की केट विग्नेश्वरन के शब्द। पैट्रिक नौ जा जैसे म्यांमार के ईसाइयों को उम्मीद है कि पोप की यात्रा से देश के लोगों को एकजुट करने में मदद मिलेगी।
मुझे उम्मीद है कि पोप म्यांमार के जातीय समूहों को शांति और एकता का संदेश देंगे। खास तौर पर मैं उनसे शांति कायम करने में मदद की उम्मीद करता हूँ।
ऐसा नहीं है कि पोप ने पहले कभी रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया हो। उन्होंने अपने भाषणों में रोहिंग्या भाई बहन कहकर रोहिंग्या मुसलमानों को संबोधित किया है। पोप से मुलाकात में ऑंग सान सूची ने भी सीधे रोहिंग्या का जिक्र नहीं किया, पर उन्होंने ये माना कि राखाइन प्रांत की स्थितियों ने दुनिया का ध्यान बहुत मजबूती से अपनी ओर खींचा है। पोप फ्रांसिस 4 दिन की यात्रा पर म्यांमार आए हुए हैं और आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन था। उन्होंने यागोन में बौद्ध, मुसलमान, हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्मों को मानने वाले लोगों से मुलाकात की। कल वो 2 लाख कैथोलिक ईसाइयों के साथ प्रार्थना में शरीक होंगे।
पोप फ्रांसिस म्यांमार की यात्रा पर थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। म्यांमार में कुछ बौद्धिक संगठनों की भूमिका क्यों है सवालों के घेरे में। कल यानी सोमवार को हादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अदालत ने हिंदू से मुसलमान बनी हादिया की शादी पर हालांकि किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया है और केस की अगली सुनवाई जनवरी 2018 के तीसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने फिलहाल हादिया को उसके माता पिता की गार्जियनशिप से हटाकर हॉस्टल में रह अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्णय पर हो रही चर्चा पर रिपोर्ट सुने फैसल मोहम्मद अली से।
आज सुबह हदिया हवाई जहाज से कोयम्बटूर के लिए रवाना हुई। उनके साथ उनके गृहराज केरल की एक महिला पुलिस भी थी। कोयम्बटूर से उन्हें सड़क के रास्ते सलेम जाना है, जहां वो होम्योपैथी की अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर रिपोर्टरों से हदिया ने कहा कि मैं शफीन जहां से मिलना चाहती हूं, मुझे यकीन है कि सलेम में हमारी मुलाकात होगी। हदिया पिछले 11 माह से अपने पिता के घर में रह रही थी। उनके पति शफीन जहां ने इसे उन्हें जबरन बंद करके रखने जैसा बताया है। اس بیچ کیرل ہائی کورٹ نے ان کی شادی رد کر دی تھی۔ شفیعین کا کہنا ہے کہ اس دوران انہیں ان کی پتنی ہدیا سے نہیں ملنے دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں ہدیا کے پتی کی وکیل اندرا جے سنگھ نے کہا،
اس کے اوپر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نہ ملے یا ان سے بات نہ کرے یا ان سے نہ رہے۔
حالانکہ کچھ لوگ اسے ماتا پتا کی قید سے ہدیا کی رہائی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن دیش کی سب سے اونچی عدالت نے جانچ ایجنسی این آئی اے کو اس انویسٹیگیشن کو جاری رکھنے کو کہا ہے جس میں دباؤ یا برین واش کر لڑکیوں کا مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے۔ یہ آروپ ہدیا کے پتا نے لگایا تھا کہ ان کی بیٹی کا برین واش کر دھرم پریورتن کروایا گیا ہے۔ این آئی اے کو اس جانچ کا حکم سپریم کورٹ کی ایک دوسری بینچ نے دیا تھا، جس کے بعد ان کے پتی پھر سے عدالت گئے تھے۔ اندرا جے سنگھ کہتی ہیں،
ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس انویسٹیگیشن کا اور اس کے لیبرٹی کا کوئی سمبندھ نہیں ہے۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی جگہوں پر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب ہدیا نے عدالت سے صاف صاف کہا تھا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتی ہے اور اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو اس کی آدھی بات ہی کیوں مانی گئی؟ یعنی وہ پڑھائی پوری کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات مہیلا ادھیکار کاریکرتا شیبا اسلم فہمی کہتی ہیں،
یہ دونوں طرف سے گھیرنے کی کوشش ہے۔ ایک تو یہ کہ اس پورے معاملے کو استری کی جو آزادی ہے اس کو نکارتے ہوئے سنسکرتی کی کو تھوپنے کی کوشش ہے، وشیش سنسکرتی کو۔ دوسری طرف اس کو ایک راشٹریہ سرکشا کے معاملے سے جوڑ کر کے اس انسان کو بھی پریشان کرنے کی کوشش ہے جس نے یہ جرات کی اور جو لگاتار ساتھ دے رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔
حالانکہ بھارت کی پورو ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل اندرا جے سنگھ بھی مانتی ہیں کہ جب ہدیا نے کورٹ کو سب کچھ صاف طور پر کہا تھا تو معاملے کو ادھورا چھوڑ دینا درست نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایک ویسک مہیلا کو کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے نہیں، یہ اب عدالتوں کے ذریعے طے ہوگا۔ عدالت نے کیس کے باقی پہلوؤں پر سنوائی کے لیے جنوری 2018 کے تیسرے ہفتے کا سمے دیا ہے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے وہ بھارت میں مہیلا ادھیکاروں کے معاملے میں ایک نیا موڑ ہوگا۔ فیصل محمد علی، بی بی سی، دلی۔
دن بھر شارٹ ویو 49, 31 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 5,875, 9,510, 9,540, 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1,413 کلو ہرٹز پر۔
یہ بی بی سی ہے، آپ دن بھر سن رہے ہیں ریحان فضل کے ساتھ۔ جھارکھنڈ میں آدیواسی بہل ضلع چائی باسا کی نہایت سادھارن مہیلا بسنتی گوپ خود کینسر سے جوجھ رہی ہیں، پر ایک جنون نے انہیں دیش کا سروشریش پارا لیگل والنٹیئر بنا دیا ہے۔ اس مہیلا کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، غریب، بے بس، روگی، لاچار، اسہائے بچوں اور لاوارثوں کی مدد کرنا۔ بسنتی کے سنگھرشوں کے بارے میں سنیے رانچی سے نیرج سنہا کی یہ رپورٹ۔
حال ہی میں سپریم کورٹ کے مکھیہ نیایادھیش دیپک مشرا اور دیش کے قانون منتری روی شنکر پرساد نے بسنتی گوپ کو اس سمان سے نوازا ہے۔ اس مہیلا نے محض دسویں تک کی پڑھائی کی ہے، لیکن ان کے خیالوں میں نیکی اور انسانی جذباتوں سے لبریز ہونے کے نہ جانے کتنے پنے سمائے ہیں۔ ان کی ہی زبانی،
میرا سوچ کم دنیا میں آئے تو دوسروں کے لیے جینا چاہیے، دوسروں کا دکھ مصیبت میں ساتھ دینا چاہیے، اس سے بڑا کچھ نہیں۔ دھن دولت لے کے تو نہیں جائیں گے، صرف گھر میں ہی چھوڑ کے جائیں گے اور اپنے جائیں گے۔ اتنا بھی سمپتی، پھر کوئی مر رہا ہم اس کو دیکھیں یار، اس کا سامنے بیٹھ کے کھانا کھائیں، اریسٹ کرے تو ایسا سمپتی کا کیا فائدہ جب غریب کا کام نہیں آ سکے۔ میرا سوچ یہی۔
پچھلے 19 سال سے بسنتی گوپ سدور آدیواسی علاقوں اور شہری چھیتر کی تنگ بستیوں میں مہیلاؤں، بچوں، کشٹ و مانسک روگیوں اور اسہایوں کی مدد کرتی رہی ہے۔ سال 2005 میں چائےباسا ضلع ودھک سیوا پرادھیکار میں ان کا چین پیرا لیگل والنٹیئر کے روپ میں ہوا۔ آدیواسی علاقوں میں ڈائن ہتیا، مانو تسکری، معمولی باتوں کو لے کر پریوار ٹوٹنے کے خطرے کے ساتھ نشہ، گھریلو ہنسا، بال شرم جیسے معاملوں کے بیچ ان والنٹیئر کی بھومیکا مہتوپورن ہوتی ہے۔ ان والنٹیئروں کو باقاعدہ پرشکشن دیا جاتا ہے، تب یہ ڈور ٹو ڈور ودھک جاگرکتا ابھیان چلا کر لوگوں کی سہایتا کرتی ہیں۔ دیش میں قریب 80,000 پیرا لیگل والنٹیئر ہیں اور راشٹریہ ودھک سیوا پرادھیکار نے نیایک مشینری کے لیے انہیں دیودوت کی سنجھا دی ہے۔ तब बसंती को मिले इस सम्मान पर चाईबासा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिले के प्रधान न्यायाधीश महेंद्र कवि उनकी तारीफ करते हैं। यह चर्चा भी जरूरी कि बसंती गोप ने सड़क किनारे फेंकी पड़ी एक नवजात बच्ची को अपनी तीसरी बेटी के तौर पर लाड़ प्यार से पाल रखा है। इसका नाम उन्होंने सपना रखा है, जबकि उनकी दो बेटियों ने अब कॉलेज की पढ़ाई के साथ पैरा लीगल वॉलंटियर का काम चुना है। चाईबासा की ही महिला वॉलंटियर सुजीता बताती हैं कि दीदी जैसा मुकाम पाना मामूली नहीं।
उनको देख करके लगता है हम लोग का तो सर बहुत ही अच्छा लगता है कि काश यदि हम लोग का भी उस मुकाम तक पहुंच पाए तो।
जबकि मानस गोराई के मुताबिक सैकड़ों लावारिस लाशों को बसंती ने दाह संस्कार कराया है और उनका ये काम उन्हें भीड़ में अलग करता है।
काम ये एक्चुअली बहुत दिनों से कर, मेरे से बहुत पहले से कर रही है और इनका है कि ये उस हद तक जाके काम करते जिस हद तक शायद हम भी जाके ना कर पाए। मतलब जैसे अगर कोई मर ही गया है तो हम लोग क्या करेंगे, लोग बुलवाएंगे उनको ये करवाएंगे, लेकिन वो है कि वो खुद भी जो उनसे बन पड़ता वो कर देती है वहाँ पे।
पिछले साल स्तन कैंसर की चपेट में आने के बाद बसंती ने हिम्मत नहीं हारा है, अक्सर इलाज के लिए वो कोलकाता जाती है। इस हालात में इन जिम्मेदारियों को छोड़ने का जी नहीं करता, यह सवाल पूछे जाने पर उनका कहना था, हिम्मत से यह जंग भी शायद जीत लूंगी। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के बड़ी संख्या में पलायन के बीच वहां की सेना की भूमिका पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, कुछ बौद्ध संगठनों की आक्रामक विचारधारा भी सवालों के घेरे में है। म्यांमार से अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्टों की श्रृंखला में बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ये पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे फसाद की जड़ कहां है।
दिन हो या रात, मांडले के बौद्ध भिक्षु प्रार्थना में लीन रहते हैं। म्यांमार के बीचों बीच बसा यह शहर बौद्ध धर्म का गढ़ है और देश की फौज भी इससे प्रभावित रही है। यहाँ की सर्वोच्च बौद्ध कमेटी के ताकतवर और कद्दावर भिक्षु अभी अभी रखाइन प्रांत से लौटे हैं। इनके मुताबिक वहाँ हालात ठीक हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने म्यांमार की सेना पर नस्ली जनसंहार का आरोप लगाया है। कमेटी के सदस्य यूईएन दसा का इस बात से इनकार करते हैं।
हम लोग कट्टरवादी बातें नहीं करते, हमारे देश में सभी धर्मों को अपनी बात रखने की आज़ादी है, लेकिन इस्लाम धर्म म्यांमार की सबसे बड़ी दिक्कत है। यह ऐसा धर्म नहीं है जो दूसरे धर्मों के साथ मिलजुल कर रह सके।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान बौद्ध राष्ट्रवाद के बढ़ते कद के पीछे जिनका बड़ा हाथ है, उनका नाम अश्विन विराथु है। ये वही विराथु हैं जिन्हें टाइम मैगजीन ने फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर बताया था और म्यांमार सरकार ने उनके बौद्ध संगठन पर पाबंदी लगा दी है। वजह है विराथु के म्यांमार में रहने वाले मुस्लिमों को देश निकाला देने की धमकियां। लेकिन विराथु को पसंद करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने बीबीसी की टीम को देखकर मुंह मोड़ लिया था और दो दिनों में 7 कोशिशों के बावजूद उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की। अश्विन विराथु जैसों की आग उगलती बातों ने दाव चिन यी जैसों को डरा रखा है जो उनके मठ से ज्यादा दूर नहीं रहती। इनकी 3 पीढ़ियां मांडले में रहती आई हैं और एक लेखक और कवि होने के अलावा ये अल्पसंख्यक मुस्लिम भी हैं। चिन यी ने कहा,
पहले यहाँ धार्मिक तालमेल था, मगर अब सब एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। बढ़ती दूरियां और धर्म के आधार पर बटे लोगों को देखकर अफसोस होता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर बौद्ध धर्मवक्ता अच्छे हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा आक्रामक बातें करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सब यहीं रुक जाए।
चाहे बर्मा में एक शासक हो या ब्रिटिश राज का दौर हो, मांडले ऐसा शहर है जहाँ सभी धर्म आकर मिलते रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। एक मजहब के लोग अपने लोगों के बीच सिमटते जा रहे हैं। वजह थी 2014 में हुई हिंसा जिसमें बौद्ध और मुस्लिम दोनों हताहत हुए थे। मांडले में लोग बताते हैं कि हिंसा भड़कने के बाद कथित बौद्ध युवकों ने मुस्लिम इलाकों पर हमला भी किया था। नतीजा ये हुआ है कि मुस्लिम समुदाय अपने लोगों के बीच सिमटता जा रहा है। हालांकि राजनीतिक दल इस बात को खारिज करते हैं। म्यांमार के सबसे ज्यादा तनावग्रस्त इलाके रखाइन प्रांत में अराकान नेशनल पार्टी सबसे मजबूत है और उसके महासचिव और पूर्व सांसद तुन ऑंग च्या ने कहा कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की उपज है।
राष्ट्रवाद की उपज नहीं सर, ये गलत बात है। इस देश में लोग अपने अपने धर्मों का स्वेच्छा से पालन करने के लिए आजाद हैं। वैसे बौद्ध यहाँ बहुसंख्यक हैं। हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों का मकसद एक अलग इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना है और उन्हें कुछ देशों का समर्थन भी मिल रहा है।
इस तरह की सोच के समर्थन में सबसे बड़े शहर यंगून में हजारों लोग सड़कों पर अक्सर निकलते हैं जुलूस में, लेकिन कुछ इस बात पर ज्यादा चिंतित हैं कि 6 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों के म्यांमार पलायन पर आखिर लोकतंत्र समर्थक खामोश क्यों हैं। खिन जो विन देश के बड़े थिंक टैंक तंपाडा इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं।
राष्ट्रवादिता या कट्टर राष्ट्रवाद बहुत छोटा शब्द लगता है। ब्रिटिश काल में इसकी बहुत अहमियत थी, लेकिन अब ये एक भय का रूप ले रहा है, एक तरह से इस्लाम का भय जो दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। ज्यादा अफसोस ये है कि राजनीतिक दल और बर्मा की फौज भी ऐसी ताकतों को हवा दे रही है।
हकीकत यही है कि म्यांमार में 100 से भी ज्यादा जातीय समूह लंबे अरसे से साथ रहते आए हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही क्योंकि बौद्ध धर्म मानने वालों और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। वजह है राष्ट्रवाद की बढ़ती गूंज। नितिन श्रीवास्तव, BBC मांडले, म्यांमार।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने प्लेयर्स की सैलरी बढ़ाए जाने की मांग की है। विराट ने कहा, भारत में क्रिकेट से बढ़ती कमाई में प्लेयर्स का शेयर भी बढ़ना चाहिए। प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बीती 30 दिसंबर को खत्म हो चुका है। बोर्ड के एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार प्लेयर्स सैलरी हाइक चाहते हैं। इस बारे में कप्तान विराट कोहली, पूर्व कप्तान MS धोनी और मौजूदा कोच रवि शास्त्री बोर्ड के सामने इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस बारे में टीम इंडिया और BCCI के बीच शुक्रवार को मीटिंग होनी है। विराट कोहली की इस मांग पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं खेल पत्रकार और क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
जो भी दर्शक आते हैं, जो भी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है, वो इन खिलाड़ियों की वजह से है। तो अगर खेल में इतना पैसा आ रहा है और अगर इनके अप्रेजल में और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, विराट कोहली की टीम ने मैचेस जीते हैं, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, सारे फॉर्मेट्स में, तो बिल्कुल जायज है। अगर इनको इनकी सैलरी में हाइक की डिमांड है तो बिल्कुल हाइक मिलना चाहिए।
इससे पहले कोच रहे पूर्व बॉलर अनिल कुंबले ने भी प्लेयर्स की सैलरी बढ़ाए जाने की मांग की थी। अगली खबर हॉकी के खेल की। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी के मैचेस की सूची घोषित की, जिसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड, मलेशिया और वेल्स पूल बी में हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा और स्कॉटलैंड पूल ए में। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 7 अप्रैल को खेला जाएगा। और अब खबर बिलियर्ड्स की। भारत के पंकज आडवाणी ने सोमवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। पंकज ने ईरान के आमिर सरघोश को फाइनल में 8-2 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। अपने आक्रामक खेल से आडवाणी ने 18वां विश्व खिताब जीता है।
और अब सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। हैदराबाद में आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने कहा कि यह सम्मेलन भारत और अमरीका के बीच बढ़ते आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का प्रतीक है। पश्चिमी जर्मनी के शहर अल्टिना के मेयर एंड्रिया होलस्टीन की तबीयत में सुधार हो रहा है। इस सप्ताह सोमवार को उन पर तेज धार वाले एक हथियार से हमला हुआ था। केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने राजधानी नैरोबी में हुए एक समारोह में अपने पद की शपथ ले ली है। मिस्र के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिनाई प्रांत में सुरक्षा बलों ने एक अभियान के तहत विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं और 11 संदिग्धों को मारा है। बांग्लादेश की सरकार ने म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक विवादित योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश से थोड़ा हटकर यानी देश से थोड़ा अलग बाढ़ प्रवण और नमक दूषित एक द्वीप पर हजारों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए खास शिविर बनाए जाएंगे। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।